शांति। संगम युग में जब बाबा आते हैं, हम बच्चों को से मिलन मनाने, हमें पढ़ाई पढ़ाने, हमें आप समान लायक बनाने, तब तक हम आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी पतित हो जाती है, इतना शक्तिहीन हो जाते हैं, जो बाबा की वाणी को हम समझ नहीं पाते हैं। बाबा बहुत सरल ढंग से समझाते, फिर भी आत्मा में शक्ति न होने के कारण आत्मा समझ नहीं पाती है। इसीलिए हर मुरली में बाबा कहानियां, कहावतें, वाक्य वाक्यांश के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं। और जब कहानियां, कहावतें, वाक्य वाक्यांश के माध्यम से जब समझाते हैं, तब बच्चे सहज रीति से इस ज्ञान को समझ लेते हैं, क्योंकि कहानियां, कहावतें इस दुनिया की होती है। इसीलिए बाबा सबका पिता है, सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, और सबका उद्धार करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबको आप समान बनाने के लिए है। इसलिए बाबा बहुत सारी भाषाओं में, कि बहुत सारी भाषाएं जो है बाबा मुरली में भाषाओं के शब्द उच्चारण करते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, मैथिली, उड़िया, उर्दू आदि भाषाओं में बाबा आदि भाषाओं के शब्द सब उस मुरली के अंदर में उच्चारण, क्योंकि सबकी पिता है, सबका पिता है बाबा। इसीलिए तो इंग्लिश की कौन कौन सी बातें बाबा उच्चारण करते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह, चैरिटी बिगेंस एट होम, ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, गॉड इज ट्रूथ, नॉलेज फुल, रिलीजियस इज माइट आदि, ब्लिसफुल आदि आदि वाक्य बाबा, बहुत सारी वाक्य बाबा उच्चारण करते हैं। वैसे कहावतें, वाक्य वाक्यांश कौन सा उच्चारण करते हैं बाबा, अपनी घोट तो नशा चढ़े, चढ़े तो चखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, चढ़े तो चखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, कच्छ में कुरुम, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, अंतकाल जो इस स्त्री सिमरे, मरुआ मौत मिलू का सुकार आदि बाबा जय उच्चारण करते हैं। वैसे कहानियां भी बहुत बाबा याद करते हैं महावाक्य के अंदर। तो कहानियां कौन कौन से, कहानियां कौन कौन से बाबा उच्चारण करते हैं? हातिमताई और दधीचि ऋषि, राजा हरिचंद्र, रूप बसंत, खुदा दोस्त, राजा भर्तरी, रानी की हार, गज की ग्राह, गुलबकाबली, बहुत सारी कहानियां को बाबा याद करते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अलावली दिन की कथा, जिन की कहानी, कारुण का खजाना। लेकिन आज जो टॉपिक पे चर्चा होगी वो टॉपिक है मुख में मुंह लड़ा। और ये बाबा ये शब्द निकाले हैं हातिमताई की कहानी से। हमने जब देखा हातिमताई की कहानी वाली बुक देखा तो बहुत मोटी बुक थी, और उससे बाबा इतनी छोटी सी लाइन लिए हैं। तो इस हातिमताई की कहानी और मुख में मुंह लड़ा के विस्तार में जाने से पहले हम एक दो ऐसी कहानियां बाबा जो उच्चारण करते उसके बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे, दो तीन कहानियां, उसके बाद हम मुख में मुंह लड़ा के तरफ जाएंगे। तब पहले हम लेते हैं दधीचि ऋषि। दधीचि ऋषि के लिए बताते हैं कि बहुत ही त्यागी, तपस्वी, महान ऋषि थे और सर्व का कल्याण चाहते थे दधीचि ऋषि। और उधर राक्षस का और देवताओं का बार बार युद्ध होता रहता था, और बार बार युद्ध होने के कारण देवताएं कई बार कमजोर हो जाते थे, निराश हो जाते थे, हारने की नौबत आ जाती थी। और बार बार राक्षस आक्रमण कर करके, राक्षस का एक ही उद्देश्य होता था कि इनका हाथ हथियार ले ले, अस्त्र शस्त्र ले ले, और इनका बैकुंठ के राज पे हम राज्य करें, एक ही होता था उनका, राक्षसों का। देवताओं सारा परेशान हो जाते थे क्या करें। तो जब युद्ध आरंभ हुआ उसके बाद में सोचने लगे कि हमारे हाथ हथियार ना ले, इसीलिए देवताओं ने क्या किया कि इस हाथ हथियार अस्त्र शस्त्र को कहां पे रखा जाए। तो सब आपस में मीटिंग किया और मीटिंग में फाइनल किया कि दधीचि ऋषि के पास हम रखेंगे तो ये सुरक्षित रहेगा। सभी जाते हैं दधीचि ऋषि के पास और दधीचि ऋषि से के पास अपनी बातें रखते हैं कि ऐसी ऐसी है कि आपके पास हमारे अगर अस्त्र शस्त्र रहता है तो हम बच सकते हैं इसे, इसीलिए हमारी विनती को स्वीकार करें। और दधीचि ऋषि इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। दधीचि ऋषि देवताओं के अस्त्र शस्त्र को संभालने रखते, मतलब ध्यान रखते रहते, संभालते रहते, साले साल बीत जाता है संभालते संभालते, देवताएं उनकी अस्त्र शस्त्र लेने आते ही नहीं। उसी बीच में दधीचि ऋषि क्या कर को बाहर जाना होता है कहीं टूर पे अपने फैमिली के साथ। अब क्या करे, खजाने का कौन संभालेगा, सोच के दधीचि ऋषि सारा अस्त्र शस्त्र को जला देते हैं। और अस्त्र शस्त्र को जला के उनकी जो राख निकलती सारा राख खा लेते हैं। और राख खाने के बाद में दधीचि ऋषि उनकी सूक्ष्म शक्ति अपने अंदर ले लेते हैं, उस सारे अस्त्र शस्त्र का। जब टूर से आते हैं दधीचि ऋषि अपने आश्रम में, उधर से देवताएं लोग भी आ जाते कि हमें अभी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, हमें अस्त्र शस्त्र दीजिए। तो दधीचि ऋषि बताते हैं कि अभी आप नहीं आओ, हमारी जब पत्नी आश्रम में नहीं होगी, कहीं बाहर गई होगी, उस समय आप आना। और दधीचि ऋषि के कहे अनुसार जब उनकी पत्नी नहीं होती उस समय देवताएं आते हैं, तो देवताओं को बताते हैं कि आप सब बहुत साल तक नहीं आए, सो उसको हमने सारा जला के राख को खा लिया, अभी आपको अस्त्र शस्त्र चाहिए तो आप उस हमें मैं यज्ञ को यज्ञ ज्वाला को शुरू करता हूं योग बल से, उस यज्ञ ज्वाला में जल जाऊंगा, और यज्ञ ज्वाला में जलने के बाद में जो हमारे शरीर के हड्डियां निकलेगी उस हड्डियां से आप सारे अस्त्र शस्त्र बना लेना, वो बहुत बलवान होगा। और ऐसे ही करते हैं तो दधीचि ऋषि जी उसमें जल जाते हैं, उनकी जो हड्डियां हैं उनसे देवताएं लोग अस्त्र से बनाते हैं, और बताते हैं कि उस अस्त्र शस्त्र से देवताओं की कभी हार नहीं होती है, ऐसे बताते हैं। तो बताते हैं कि देवताओं को रक्षा के लिए, सत्य मार्ग पर चलने वालों को बचाव के लिए, स्वर्ग लोक के लिए धरती की ऋषि ने अपना हड्डियां सेवा किया, सेवा में लगाया। ऐसे ही हम बच्चों को भी बाबा के कार्य में, बाबा की सेवा के लिए, बाबा के यज्ञ रक्षक बनने के लिए, बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए, बाबा का नाम बालक करने के लिए, बाबा का नाम रोशन करने के लिए हमें क्या करना है, दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी सेवा में लगाना है। दूसरा हम लेते हैं खुदा दोस्त। बताते हैं खुदा दोस्त, ये मुस्लिम है ये शब्द, और कहानी भी मुस्लिम ही है। अतः एक राज्य में जो वहां के बादशाह होते हैं उनका कोई बच्चा नहीं होता है, और उस राज्य के राजा का नियम होता है कि ट्रायल के लिए, कि हमें बच्चा नहीं है तो हमें किसी को राजा बनाना है, तो ट्रायल के लिए जो व्यक्ति अपना नाम देबे उनको राजा एक साल तक राजा बनाएगा, और एक साल के बाद में राजा दूसरे उसी राज्य के नदी के दूसरी पार भेजेगा, और वो घना जंगल होता है और जंगल में भयानक जंगली जानवर वो व्यक्ति को खा लेते हैं। राजा बनना अर्थात एक साल के बाद अपने मौत को आमंत्रण देना और मर जाना, ऐसा। उसी राज्य के अंदर में एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के बच्चा होता है, वो भगवान को खुदा के दोस्त बनाया होता है, कुछ भी कार्य करता है तो खुदा से पूछ के करता है। उनके पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते, तो रोज मस्जिद जाते हैं और पिता के साथ खुद भी बच्चा भी जाता है, और हर बात खुदा के साथ अर्थात अपने अल्लाह के साथ में शेयर करता है। एक दिन उनके पिता बोलते हैं कि कल जो आज जो राजा है वो कल उनका अंतिम दिन है, और अंतिम दिन तो आगे कोई राजा बनना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें मरना होता है। बोला अच्छा ऐसा क्यों है, तो बोल सारा बताया कि जंगल के उस पर जाना होता है, वो फिर जंगली जानवर खा लेते हैं, तो राजा को भी चिंता है कि कौन राजा बनेगा। तो ये जो बच्चा है जो खुदा को दोस्त बनाया है, वो उनका एज लगभग 20 साल होता है, तो खुदा से पूछता है कि मैं तो आपको खुदा का दोस्त बनाया हूं, तो इन राजा का क्या होगा, ये तो कोई राजा बनना ही नहीं चाहता है, तो कल राजा कौन बनेगा। खुदा दोस्त बोलते हैं कि कल राजा तुम बनोगे। तो अपने खुदा से पूछता है वो बच्चा कि अगर राजा मैं कल बनता हूं तो आपको क्या दिल है कि एक साल के बाद में मुझे मारना चाहते हो आप। तो बोला नहीं तुम मरोगे नहीं। फिर बच्चा खुदा से पूछता है अगर मरेंगे नहीं तो एक साल के बाद में राजा तो उधर भेज देते हैं और जंगली जानवर तो खा लेते हैं नदी के उस पार। बोलता है नहीं तुम पहले राजा बनो और जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे करो। फिर वो बच्चा राजा बनता है। फिर खुदा बोलते हैं तुम राजा बन गए। तो बोला हां तुम ऐसे करो कि नदी से उस पार जो घना जंगल है उसको कटवा दो, और घना जंगल को कटवाओ। घना जंगल कटवा देता है। बोला कटवा दिया अब क्या करना है। बोले कि वहां पे एक शहर बसाओ, महल बनाओ और एक शहर बसाओ। शहर बनाता है, महल बनाता है, बहुत अच्छा किला बनाता है। अब एक दिन पहले बोलते अब क्या करना है क्योंकि कल तो मेरा दिन पूरा हो जाएगा। तो बोलता है कि अभी अनाउंसमेंट करो कि कल तो मैं उस उधर जाऊंगा जंगल के उस पार, नदी के उस पार। किसी को अगर जिस जिस को जाना है शहर से, और उस समय वो बहुत लोकप्रिय काम किया होता है जो सभी को पसंद आता है। खुदा दोस्त बोलते हैं कि सभी को अनाउंसमेंट कर दो कि जिस जिसको जाना है उनको उस नदी के उस पार बहुत अच्छा मकान मिलेगा और मुफ्त मिलेगा, और मैं वहां का बादशाह बनूंगा, ऐसे अनाउंसमेंट करो। और ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं, राजा को पहुंचने से पहले बहुत अच्छी शहर बस जाती है और वो खुदा दोस्त बच्चा उधर जाके बादशाह बन जाता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। बताते हैं इसमें कि परमात्मा को दोस्त बनाने से, परमात्मा को साथी बनाने से, भगवान के साथ रहने से भगवान हर पल कैसी भी परिस्थिति में मौत के मुंह से भी निकालते हैं। वैसे तीसरी कहानी है जिन की कहानी। जिन के लिए बताते हैं ब्राह्मण पति पत्नी, उनको बच्चे नहीं होते, ब्राह्मण अपना पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं और पत्नी को काम कर करके इस घर की सेवा कर करके परेशान होते हैं। एक दिन अपने ब्राह्मण देवता से पूछते हैं उनकी धर्म पत्नी कि हम कब तक ये काम करते रहेंगे, आप इतना वेद शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे कीजिए कि आप अपने वेद शास्त्र में देखिए कुछ उपाय कि कोई ऐसे व्यक्ति को हम अपने यज्ञ से निकालें जो हमें उनकी पेमेंट भी नहीं करनी पड़े और वो अपने आप काम भी करें। बोलते ठीक है ढूंढता हूं। फिर वो देखते हैं तो बोलते कि यज्ञ करने से निकलेगा, तो यज्ञ करता है, उससे निकलता है वो जीन निकलता है, जीन निकलता है तो बोलता है मैं आपका सारा काम कर दूंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं, ईमानदारी से करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी है, अगर काम अगर आप नहीं दोगे, मुझे काम भरपूर चाहिए, ड्यूटी भरपूर चाहिए, अगर ड्यूटी भरपूर नहीं दोगे तो आपको मैं खा जाऊंगा। तो बोलता नहीं मैं आपको काम दूंगा, क्योंकि उनकी पत्नी तो बहुत तंग हो जाती काम कर करके। अब जीन को काम देता है, जितना भी काम दो थोड़ी देर में कर देते हैं, जितना भी काम दो थोड़ी देर में कर देते हैं, जितना भी काम दो थोड़ी देर में कर देते, ये परेशान हो जाते, अब क्या करे, अगर काम नहीं दिया तो खा जाएगा। फिर उस समय जीन ब्राह्मण सोचते हैं अब क्या करे, तो ब्राह्मण कहते हैं कि सीढ़ी चढ़ो और उतरो, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, और जब बीच में मैं काम बताता हूं वो काम करो। तो जीन ऐसे ही करने लगता है, ऐसे करते 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 फिर उनकी काम हल्का हो जाता है। हम भी बाबा के बच्चे, जब भी हम खाली होते हैं हमारे बुद्धि में माया की प्रविष्टता होने की चांस अधिक हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हर कर्म करते, चलते फिरते खाते उठते बैठते सेवा करते, आप जिन मिसल सीढ़ी चढ़ो उतरो, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ अर्थात परम धाम जाओ, सूक्ष्म बतनाओ और नीचे आओ, कर्म करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, ताकि माया रूपी जीन आपको खा न सके। अभी हम कहानी, अभी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कहानी तो और भी बहुत सारा है, टॉपिक तो बहुत सारा है, जैसे गज को ग्राह ने खाया, हातिमताई की कहानी तो हो ही गया, रानी की हार, बहुत सारी है, बाद में कभी करेंगे उसका, अभी टॉपिक की तरफ आते हैं। यौवन देश के राजा, शादी के बहुत साल के बाद उनको एक बच्चा होता है, और बहुत बच्चा वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, और बहुत सालों के बाद होने के बाद और राजा के बच्चा होने के बाद उनकी तो लालन पालन कुछ और ही तरीके से होता है, और बहुत अच्छे लालन पालन के बाद वो जो युवराज होता है बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, बहुत सुरवीर, लोक कल्याण अर्थ उनका जीवन जैसे लगता है, और वो इतना लोगों की भलाई की कार्य करता है, इतना योद्धा होता है, उतना अच्छे लोग होते हैं कि उनका नाम विश्व में फैल जाता है, एक बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं विश्व के लिए, वो बताते हैं। दूसरी तरफ उनके पड़ोसी राज्य में एक राजा होता है, उस वो राजा भी बहुत अच्छे होते हैं, उस राज्य के अंदर में एक सौदागर होते हैं, सौदागर की सिर्फ एक बेटी होती, बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले होते हो, और बेटी 10 साल के ही होती है, उसी समय उस सौदागर की पति और पत्नी के किसी कारणवश मृत्यु हो जाते हैं। मृत्यु होने से पहले जितने भी प्रॉपर्टी होती है वो सौदागर की बेटी के नाम कर देते हैं, और बेटी को राजा के जिम्मा लगा देते हैं कि आप इनकी आप संभाल कीजिए। जो पड़ोसी राजा थे सौदागर के बेटी को अपने बेटी की तरफ पालना पोसना, एक राजकुमारी की तरफ पालते पोसते हैं, लेकिन माता पिता की मृत्यु ने उस सौदागर की बेटी को मन को घेर लिया होता है। ये जिंदगी तो दो चार दिन का है, जैसे माता पिता गए वैसे हम भी एक दिन जाएंगे। इसलिए इतनी जो प्रॉपर्टी है, इतनी जो संपत्ति है, इतना जो हीरे जवाहरात है, उसको क्या किया जाए। वो सौदागर की बेटी अपनी दासिन को बोलती है कि इससे अच्छा मैं कुवारी रहूं और कुवारी रह के विश्व की कल्याण, जन अर्थ कल्याण, लोक सेवा के लिए संपत्ति को लगाऊं। तो दासिन भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और दासिन भी बोलती है कि बेटी ये आपकी जो कल भावना है बहुत अच्छी है, ऐसे आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर वो सौदागर की बेटी बोलती है अगर मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी उम्र हो गई है शादी करने की, लोग क्या कहेंगे, लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, तो इससे बचने का उपाय क्या है। तो दासिन बोलती है बेटी मैं 7 सवाल ढूंढ के देती हूँ, 7 सवाल का जवाब जो देगा वो मुझसे शादी करेगा, ऐसे लिख के अपने मकान के आगे लिख दूं। और वो 7 सवाल लिख के रखता है जो अजीब अजीब प्रकार की सवाल होती है, जो जवाब देना लोगों के लिए मुश्किल होता है। और एक लोक सेवा अर्थ एकदम जीवन को लगा के बहुत लोगों के कल्याण के लिए वो अपना जीवन लगाती है वो सौदागर की बेटी, और वो भी बहुत नामी गरामी बन जाती है। तीसरे राज्य के राजकुमार उस सौदागर की बेटी का जो बारे में सुनते हैं कि इतनी अच्छी है, इतनी इनका जीवन अच्छा है, इतने लोगों के लिए काम करते हैं, प्रतिभाशाली है, ऐसे सुन सुन के वो तीसरे राज्य के राजकुमार इस पे मोहित हो जाती है सौदागर की बेटी पे, और उस राज्य से इस राज्य में आते हैं और सौदागर की बेटी को बोलते हैं कि मैं आपके बारे में बहुत सुना हूं, बहुत अच्छा जानता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वो जो कुमारी होती है सौदागर की बेटी बोलती है नौजवान तुम मेरे से शादी करना चाहते तो 7 सवाल का जवाब दे, उसके बाद में तुम शादी करना मेरे से। बोलते सवाल क्या है बताओ, बोला वहां पढ़ ले। पहला सवाल पढ़ता है नौजवान, उस समझ में कुछ भी नहीं आता है और वहां से चला जाता है, और वो सौदागर की बेटी के याद में बेचारा दर बदर भटकने लगता है, जंगल में पागल के जैसे घूमने लगता है। और उसी जंगल में हातिम तय जो यौवन राज्य के राजा जो पहले बताए थे उनका नाम हातिम तय रखे रहते हैं, वो हातिम तय उसी जंगल में शिकार करने के लिए गए होते हैं। बाद में इसको देखता है नौजवानों को, युवराज को, तो ये देखने में तो अच्छे घर का लगता है लेकिन कौन है क्या है पूछते हैं उनसे, तो सारी बातें बताता है मैं फलाने राज्य का हूं, मैं इधर ही सौदागर की बेटी से शादी करने आया था, इन्होंने एक सवाल पूछा जो सवाल का जवाब मेरे से नहीं हुआ और 7 का जवाब देना था एक भी नहीं हुआ, इसीलिए मैं इधर भटक रहा हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं, उनके बगैर नहीं रह सकता, ऐसे बताते हैं। तो बोलता है कि चलो सवाल का जवाब मैं दूंगा लेकिन शादी मैं तेरे को ही कराऊंगा, ऐसे बोल के हातिम तय वो सौदागर की बेटी के पास जाते हैं। सौदागर की बेटी से बात करते हैं कि देखो 7 सवालों की जवाब मैं दूंगा, बाकी शादी आपको इनसे ही करनी होगी। तो सौदागर की बेटी मान जाते हैं कि भले जवाब कोई भी दे, शादी भले मैं कर लूंगा बोल के ऐसे वो मान जाती है। अब ये हातिम तय यौवन राज्य के राजा के राजकुमार उस सवाल का जवाब ढूंढे चलते हैं। कहानी बहुत बड़ी है, उसको हम शॉर्ट करते हैं क्योंकि हमें समय पे पूरा भी करना है। हातिम तय उस सवाल को ढूंढने के लिए जाते हैं, ढूंढते ढूंढते रीछों की राज होता है, एक रीछ माने जंगली लोग समझ लीजिए, जंगली लोगों की राज होता है, उस राज में पहुंचते हैं और वहां पे जो जंगली लोग उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के अपने बादशाह के पास ले जाता है, बादशाह उनको बंदी बना लेते, बोलते तुमने किसकी हिम्मत से यहां पे आया, कौन है तुम, कहां से आया, वो क्यों आया तुम, बगैर परमिशन लेके आना चाहिए, क्यों आया, कैसे आया। तो बोलते कि हमको कुछ पता नहीं था, सारी बताते कि हमें 7 सवालों का जवाब चाहिए, तो इस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं निकला हूं। तो बोलता है कि इसका दंड में आपको मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी, ऋषराज बोलते हैं। बोलते है, नहीं मैं लक्ष्य कुछ काम के लिए निकलू, काम हो तब मैं बाद में शादी के लिए सोचू। बोलता अगर तुम नहीं शादी करोगे तो अपने एक गुफा के अंदर में बंद कर देते हैं और ऊपर से बहुत बड़े पत्थर से ढक देते हैं। बताते उस कहानी में। गुफा के अंदर में 3 दिन तक रखता है उनको, बगैर खाए बगैर पिए कुछ नहीं। फिर वो ऋष के जो ऋष राज के जो बेटी होती है, वो बेटी उनके स्वप्न में आते हैं, बोलती हैं, हे राजकुमार, ए हातिमताय, अगर तुम अपने जीवन में कल्याण चाहते हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, अन्यथा ये हमारे पिताजी तुम्हें बचने नहीं देंगे, ऐसे बताते हैं। फिर 3 दिन के बाद सोचते हैं, मरने से तो अच्छा शादी करना ठीक है। फिर 3 दिन के बाद में ऋष राज जो होते हैं, वो अपने सैनिकों को भेज के उन दरबार में बुला के बोलते, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे आया कि नहीं, ये बताओ। फिर मजबूरी से रहता है उनके पास, और उनकी बेटी तो स्वप्न में आया रहता है, तो बोलते हैं, नहीं चलिए, आपकी आज्ञा का पालन होगी, मैं आपके बच्चे के साथ शादी करूंगा। फिर दोनों का शादी होता है, सालों साल बीत जाता है, शादी साथ में रहने लगते हैं, एकदम जीवन सरल हो जाता है। अचानक एक दिन याद आते हातिमताई को कि अरे, हम तो कुछ करने निकले थे, हम तो कुछ और ही कर बैठे, अभी हम वहां का वो बात का क्या होगा जिनको हमने वचन दिया है, हमारी वचन तो अभी तो पूरी नहीं हुई। फिर सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हैं, उनकी पत्नी बोलती है, पत्नी को बताती है कि आप मुझे छुट्टी दो और आप अपने पिताजी से छुट्टी दिलवाओ, फिर मैं आऊंगा ये सारा कार्य पूरा करके। फिर उनकी पत्नी मान जाती है, पत्नी उनके ऋषराज से बात करती है, ऋषराज भी बोलती, बच्चे अगर तुम छुट्टी देते हो तो मुझे कोई हर्जा नहीं, और उनको हातिमताई को छुट्टी मिल जाता है। और हातिमताई वहां से निकलता है और जंगल जंगल जाता है, तो एक नाग सांप, बहुत बड़ी अजगर सांप, उनको हप कर लेता है, हातिमताई को। हातिमताई को जो हप कर लेता है, लेकिन होता क्या है कि वो 3 दिन तक अजगर सांप, जहरीला सांप उनको हप करने के बाद में भी हातिमताई को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और 3 दिन के बाद वो सांप उनको उल्टी कर देता है। क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाया कि उन जाते समय उनकी पत्नी ने उनको एक मुहलड़ा दिया था, वो मुहलड़ा उनके साथ में था, और उस मुहलड़ा के कारण से वो बच गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो सांप का लार था उनके बॉडी में लगा हुआ था, तो सोचता है अगर कहीं तालाब मिले तो मैं वहां जाके स्नान कर लूं। और तालाब को ढूंढने जाता है तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ पानी मिलता है तालाब में, और वहां जाता है, नदी के जैसे जाता है तो उसमें आधी नाड़ी और आधा मछली, बहुत सुंदर, जो वो कभी जिंदगी में नहीं देखा था, वो दिखता है, और बोलता है, आओ आओ स्नान कर लो, बोल के बुलाता है उसको। हातिमताय उसमें स्नान करने जाता है, जैसे डुबकी लगाता है, वो जो आधी नाड़ी और आधी जो मछली है तो उसको खींच के ले जाता है अंदर ही अंदर, खींच के ले जाते एक बहुत अच्छा बगीचा है जिसके बीच में बहुत अच्छा महल है, वहां ले जाता है और बहुत सारी पड़ियां आ जाती वहां पे, और हातिमता एकदम निश्चिंत होकर वहां रहता है। उस समय हातिमताई को थोड़ा संकल्प खराब आता है और सोचता है इसको टच करूं, जैसे टच करने जाते हैं लात मारते जोर से, हातिमताई बेहोश हो जाते हैं, और बेहोश होने के बाद जब उनको होश आता है तो घना जंगल में अपने आप को पाते हैं, ना उन पड़ियां दिखती है, ना महल दिखता है, ना बगीचा दिखता है, और उस समय भी वो बच जाते हैं हातिमताई, क्योंकि उनके साथ में उनकी पत्नी के दिवा मुहलड़ा रहता है। उसके आगे और जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, और दूसरे राज्य में जाता है तो उनको पता चलता है कि दूसरे राज्य में आ गए, लेकिन उस राजा की जो पत्नी होती है, वो पत्नी की आंख में बीमारी होती है, आंख का दर्द रहता है और आंख से दिखता नहीं है, जो सालों साल से है, कई सारे वैद्य उपचार कर करके थक जाते हैं जिनकी इलाज नहीं होती है। हातिमताई उसके पत्नी के उस मुहलड़ा को घिस के आंख के ऊपर लगा देते हैं, और थोड़े देर के बाद में उनकी पत्नी, राजा की पत्नी ठीक हो जाती है। उससे और आगे बढ़ते जाता है, फिर दूसरे राज्य में पहुंचता है, और हातिमताई को वहां पे बंदी बना लेता है फिर से कि तुम क्यों आया यहां पे, और उबलते हुए घी के कढ़ाई में उनको डाल देता है, पकड़ बांध ऊंध के। उस समय भी मुलड़ा के कारण से, मुलड़ा रहते उनके साथ में, वो घी जो है ना एकदम ठंडा पानी हो जाता है, और हातिमताई बच जाते हैं। ऐसे बताते हैं कि हातिमताई को पहाड़ से भी गिराया, नदी में भी फेंका, लेकिन हातिम तय के साथ में मुहलड़ा होने के कारण से हातिम तय हर जगह बच जाते हैं। तो मुहलड़ा का अर्थ होता है सुरक्षा करने वाली चीज, बचाव के लिए, विघ्नों को पार करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, ऐसी वस्तु को मुहलड़ा कहते हैं। ब्राह्मण जीवन में मुहलड़ा अर्थात क्या? ब्राह्मण जीवन में कौन कौन सी मुहलड़ा को अपने जीवन में लाएंगे, अपनाएंगे तो हमारे जीवन निर्विघ्न बनेगी, रोग मुक्त बनेगी, शोक मुक्त बनेगी, जीवन युक्त बनेगी। तो ब्राह्मण जीवन की मुहलड़ा, सबसे पहला मुहलड़ा है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दिल से बाबा बोलो, बाबा तुम्हारे लिए हाजिर है, बंधा हुआ है, बाबा एक सेकंड भी न बिताए हुए बाबा तुम्हारे पास मदद करने के लिए आ जाएगा। जब तक दिल से बाबा नहीं कहेंगे तब तक बाबा नहीं आएंगे। बाबा मुरली में सुदामा को भी याद करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं सुदामा एक बार मेरे लिए कदम उठावे मैं 100 बार कदम उठाऊंगा, इसलिए पहले दिल से बाबा हमें कहना होगा। पहला शब्द कौन सा है, पहला मुहलड़ा कौन सा है? बाबा। दूसरा मुहलड़ा है बाबा की याद। अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की याद में सेवा करते हैं, बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन करते हैं, बाबा की याद में सोते हैं, बाबा की याद में चलते हैं, बाबा की याद में किसी के साथ बात करते हैं, बीच में माया रूपी अजगर नहीं आएगी, बीच में तालाब में वो पड़ी वो सुंदरी और मछली नहीं खींचेगा, खोलता हुआ घी में हम नहीं जल पाएंगे। अगर हम बाबा के याद में रहेंगे तो। तीसरा कौन सा है, वो याद में आ गया। तीसरा है बाबा की ज्ञान। बाबा की ज्ञान हम सुनते तो हैं, सुनाते भी है, उनको स्वरूप में लाना है। ज्ञान में हम कब से चलते हैं ये बात नहीं, ज्ञान हमारे अंदर में कब से चलता है उसकी बात है। रग रग में, हर रग रग में, अंग अंग, रोम रोम, टिशू टिशू, तंतु तंतु, सब जगह बाबा की ज्ञान समाया हुआ हो। बाबा की ज्ञान समाया हो। दादी जानकी, कई बार हमने सुना है ये बात इसी क्लास के अंदर, कि जब दादी विदेश गई, दादी को ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं था, दादी से ज्ञान सुनने वाला। दादी ने ज्ञान किसको सुनाया? दीवारों को सुनाया, खिड़की को सुनाया, पर्दा को सुनाया, अलमीरा को सुनाया, अपने सामान को सुनाया। हमें दूसरों को ज्ञान सुनाने से पहले स्वयं को ज्ञान सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, स्वरूप मिलाना पड़ेगा। ये कौन सी थी? तीसरी मुहलड़ा। चौथा है बाबा की सेवा। सेवा में, सेवा में अभिमान भी आता है तो अभिमान भी टूटता है। सेवा में अभिमान आता है तो मुहलड़ा नहीं, वो विघ्न बन के आएगा, वो परिस्थिति बन के आएगी, वो जो हातिम तय के रास्ते में जो विघ्न आया था वो विघ्न बन के आएगा। अगर सेवा में देही अभिमानी अवस्था है, निमित्त भाव से करते हैं, निर्माण भाव से करते हैं, यज्ञ के लिए करते हैं, वो हमें मुहलड़ा का काम करते। कई सारे बुराइयों से, बुरे संग से, बुरे परिस्थिति से, बीच के अगर खाली रहेंगे तो माया आएगी हमारे जीवन में, उससे हमें बचाता है। तो कभी भी हमें निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, निर्मल चित्त से सेवा करनी है, यज्ञ रक्षक बन के सेवा करना है, सेवा भाव से सेवा करना है, ये थी चौथी मुल्हड़ा। पांचवी मुल्हड़ा है बाबा की श्रीमत। ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण बन जाते हैं, बहुत उमंग, बहुत उत्साह, बहुत जोश, धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं। श्रीमत की बाबा के आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, बोलते हैं कौन आज तक संपूर्ण बन गए उनका नाम दिखाओ मेरे को, श्रीमत पे चल चल के, अमृत वेला कर करके, योग कर करके, ऐसे बोल देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के श्रीमत को, आज हमारी दादियां, आज हमारी मम्मा, आज हमारे बाबा, आज हमारे बड़े श्रीमत को पकड़ के आगे बढ़े हैं, न कि श्रीमत को छोड़ के। इसलिए हमें कभी भी श्रीमत को हल्के रूप से नहीं लेना है, श्रीमत को छोड़ना नहीं है, श्रीमत के कदम पे कदम रख के ही हमें आगे बढ़ना है, तभी ये जीवन में सहज सरल और आगे हम दिनों दिन आगे बढ़ सकते हैं। आगे है ईश्वरीय मर्यादा, ईश्वरीय मर्यादाओं पे हमें चलना है, तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, तभी वो राम की राज्य के अधिकारी बन पाएंगे। अगर बाबा भी याद ना आए, श्रीमत भी याद ना आए, सेवा करने में मन लगे, ज्ञान की भी बात में बुद्धि में ना आए, अब क्या करें? कहते हैं सो सुख एक चुप, चुप रहो, कुछ नहीं बोलो, गुमसुम, आगे वाला बोलने वाला बोल बोल के थक जाएगा। इसीलिए चुप रहने का मुहलड़ा हमें, मुहलड़ा साथ रखना है। अगर हम चुप रहने रह भी नहीं पा रहे हैं, ज्ञान भी, योग भी, धारणा कुछ, श्रीमत कुछ भी नहीं पटरी पे चल रही, तो आगे क्या करेंगे? स्थान बदल दो थोड़ी देर के लिए, थोड़े देर के लिए। वो वातावरण एकदम झगड़ा है, लड़ाई है, बिगड़ रहा है संबंध, बहुत दिनों के लिए बिगड़ जाएगा, परिस्थिति गंभीर हो जाएगी, दूसरे के लिए नुकसान हो जाएगा, चाहे अपने लिए नुकसान होगा, यज्ञ की नुकसान हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी, थोड़े देर के लिए किनारा हो जाओ। ये भी थोड़े देर के लिए स्थान बदलना भी मुख में मुहलड़ा है। सुखदेव जी के लिए बताते हैं कि उनको बहुत अहंकार था अपने तपस्या का, योग का, योगी जीवन का। व्यास जी के लड़का सुखदेव जी, शिव बाबा के लड़का सुखदेव जी नहीं। फिर व्यास जी बोलते, बच्चे तुम संगठन में रहो, संगठन में। बोलता, नहीं मेरे को संगठन की जरूरत नहीं है। फिर व्यास जी बोलते, बच्चे ध्यान रखना, मैं आश्रम से दूर जा रहा हूं। और आपने कहानी सुना होगा, एक कुमारी बरसात के समय बाहर रहती है, कांपती रहती है। फिर व्यास जी देखता है, बोलता, अरे तुम ठंड लग रही तेरे को, तुम छाए घर में नहीं, घर के बाहर बरामदे पे रहो। और बरामदे पे आता है, फिर बाद के और कांपती है, फिर बोलते अंदर आ जाओ, फिर बोलते हमारे बिस्तर पे सो जाओ। फिर आगे क्या हुआ वो तो सब जानते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन में संगठन की भी बहुत जरूरत है। इसलिए अकेले का तपस्वी नहीं है, हमें संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा संगठन को लेके चलना है। एकांत की भी जरूरत है, तो संगठन भी, ब्राह्मण परिवार की भी। भगवान ने जो परिवार बनाया है, सोच समझ के बनाया है, बच्चों को कल्याण के लिए बनाया है, जीव आत्माओं को उद्धार के लिए बनाया है। तो ये भी बहुत बड़ी मुल्हारा है। और है, और कौन सी मुल्हारा हो सकती है? स्वमान की मुल्हारा। स्वमान से देहाभिमान खत्म होता है, आत्मा के लिए उन्नति का सीढ़ी का साधन है। अगर हम स्वमान में रहते, स्वमान की स्मृति रहती है, तो हमसे कोई भी गलतियां नहीं होती है। इसीलिए हमें स्वमान में रह के बाबा की याद में कार्य करना है, आगे चलना है। इन सब मुहलड़ों को अगर हम साथ रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, बुद्धि रूपी मुख में रखते हैं, ब्राह्मण जीवन में हमारी सदा उन्नति प्रगति होती रहेगी। और जैसे हातिम तय, विश्व के आगे एग्जाम्पल बना, उदाहरण बना, वैसे हम विश्व के आगे एग्जाम्पल बन के बाबा का नाम बाला कर सकते हैं, बाबा का कार्य पूरा कर सकते हैं, बाबा के आशाओं के दीपक बन सकते हैं। तो ये थी इस टॉपिक का, उसमें बताते हैं कि वो जब ये हातिम ताई जब ये इन सब मोहलाड़ा मिलने के बाद में सात सवालों का जवाब भी मिल गया, जवाब मिलने के बाद में सौदागर की बेटी के साथ दूसरे राजकुमार का शादी भी करवाया और वो जीवन में आगे बढ़ते रहा, ऐसे बताते हैं। अच्छा, ओम शांति।